मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 13 फरवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने गति में अनुशासन के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, लेकिन हम लोगों की जो बातें थी वो मूलतः सिद्धांतों पर अधिक आधारित थी, यानी कि उसमें वैचारिक पक्ष ज्यादा था और व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा हो गई थी, और यह उपेक्षा जानबूझकर नहीं की गई थी, मैं यहां क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़े से जब तक हम सिद्धांत को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेते, भले ही हम उसे थोड़े में ही समझें, लेकिन हमारी जो समझ होनी चाहिए वो अच्छे तरह की होनी चाहिए। तो जब तक हम सिद्धांत को नहीं समझ लेते हैं तब तक उसका जो व्यावहारिक पक्ष है हमें दिखाई तो देता है, प्रैक्टिकली हम लाइफ में वैसा करते भी हैं, लेकिन चूंकि हम सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे हम दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम सिद्धांत को समझ लेते हैं तो होता क्या है, यानी कि आपने गणित का एक फार्मूला समझ लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये आपने फार्मूला जान लिया है। तो अब आप देखें कि कुछ भी आंकड़े दे दिए जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है। अदरवाइज आप कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, रटेंगे, याद करेंगे, मतलब हर सवाल के लिए आप क्या अलग अलग तरीके से फार्मूले लगाएंगे, आपको फिर अलग अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक फार्मूला जिसे आप कुंजी कह सकते हैं, चाबी कह लीजिए, वो सारे तालों को खोल देती है। इसलिए कल मैंने जानबूझ करके थोड़े से सैद्धांतिक पक्ष की बात की थी, जिसका पर्पज ये था कि आपके दिमाग में यह बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए। पहली बात कि अनुशासन ही प्रकृति है, अनुशासन ही जीवन है और अनुशासन ही फिजिक्स है। ये बात आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं और मुझे लगता है कि विचार करने के बाद शायद आप स्वीकार भी कर चुके होंगे। फिर दूसरी बात थी कि अनुशासन ही जीवन है और जितनी भी चीजें हैं इस पृथ्वी पर वो सब के सब गतिमान है, गतिशील है, स्टैटिक कोई भी नहीं है, हर चीज एक तरह के मूवमेंट में है। आप कह सकते हैं कि सूर्य तो नहीं चलता है, तो सूर्य को कैसे हम गतिशील माने, मतलब भूगोल में आपने यही पढ़ा है ना कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों ओर दूसरे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं जिनमें कि पृथ्वी भी एक है। देखिए, गतिशीलता को आपको थोड़े से विस्तार से समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि कण भी तो आपको स्थिर दिखाई देते हैं, चट्टान भी आपको स्थिर दिखाई देती है, लेकिन वो जो अणु है, जिन अणुओं परमाणुओं से मिलकर के वो चट्टान बनी है, चट्टान क्या है, अणुओं का संकलन है, तो एक एक अणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं तो मूवमेंट कर रहे हैं ना, कहीं मूव कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से भले ही सूरज एक जगह पर स्थिर है, लेकिन जिन तत्वों से मिलकर सूरज बना है उसमें तो लगातार विस्फोट हो रहे हैं, रेडिएशन हो रहे हैं, चीजें निकल रही हैं, वो तो गतिशील है ना। तो हर वस्तु गतिशील है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा जो संकट अनुशासन को लेकर आता है, आइए आज हम व्यावहारिक स्तर पर उस पर बात करते हैं। कोई चीज स्थिर है, आपको दिक्कत नहीं होगी। स्थिर होने पर अनुशासन में रहना अपेक्षाकृत बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप निशानेबाजी सीख रहे हैं, ठीक है, अब आप निशाना लगाते हैं तो एक चीज बिल्कुल स्थिर है, एक दीवाल बना दी गई है सामने और आपको कहा गया है कि आप इस पर निशाना लगाइए। फिर आप निशाना लगाते हैं और आप उस दीवाल को मार देते हैं, यानी कि निशाने से बेधते हैं, निशाना दीवाल पर लग जाता है ना, आपकी मार सही पड़ती है। अब क्या होगा, देखिए अनुशासन को अब समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी तक आप बंदूक चलाना नहीं जानते थे, पिस्तौल चलाना नहीं जानते थे, अब आपने सीख लिया है। सीखने के बाद क्या है कि अब आप कहीं भी मार देते हैं, लेकिन अब आप दीवाल पर मारना सीख गए हैं, है ना, कि दीवाल पर कैसे निशाना लगाया जाता है। अब आप दीवाल पर निशाना लगा रहे हैं, आपका एक अनुशासन स्थापित हो गया। अब फिर अगला अनुशासन आएगा, अनुशासन कहीं समाप्त नहीं होता है। फिर क्या होगा कि दीवाल पर एक गोला सा बना दिया जाएगा, बड़ा सा गोला बना दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि कहा जाएगा कि नहीं, अब आपको पूरे दीवाल पर निशाना नहीं लगाना है, इस गोले में निशाना लगाना है। यानी कि अगर आप दीवाल पर गोले को छोड़कर कहीं भी निशाना लगाएंगे तो हम उसे गलत मानेंगे, अगर इस गोले के अंदर निशान लगेगा तब सही माना जाएगा। फिर अब आप प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अनुशासन का अभ्यास कर रहे हैं। याद रखिए, यहां जो अभ्यास कर रहे हैं आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि आप अब अपने को अधिक सूक्ष्म अनुशासन में ढाल रहे हैं। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उस गोले में ही आपका निशान जाए, गोली में ही जाकर के आपकी गोली लगे। अभ्यास करते करते आप इसको भी हासिल कर लेते हैं, उस गोले में भी आप निशाना लगाना सीख लेते हैं। और अब जब भी आप निशाना लगाते हैं उस गोले में मार लेते हैं, यानी कि आप और ज्यादा अनुशासनबद्ध हो गए हैं। अब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आप वैसे ही दीवार पर निशाना लगा रहे थे, या उससे पहले आप वैसे ही जब बंदूक चला रहे थे और फिर दीवार पर आए और दीवार के अब गोले पर आप आ गए हैं, तो आपके अंदर की प्रतिक्रिया क्या हो रही है? आपके हाथ अब बहुत कम हिलने चाहिए, सच ये है कि हिलने ही नहीं चाहिए, आपकी टांगे स्थिर होनी चाहिए, आपके सांस पर भी आपको अपना नियंत्रण रखना होगा, आपकी आंखें भी बिल्कुल तेज और चौकन्नी होनी चाहिए। ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है ना। चलिए, अब गोले पर निशाना लगा लिया आपने, अब उन्होंने क्या किया कि उस गोले में भी एक छोटा सा गोला बना दिया, एक बिंदु बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपको इस बिंदु पर निशाना लगाना है। चलिए साहब, अब आप उस बिंदु पर निशाना लगाने का अभ्यास करें। और ऐसा किया जाता है, ये मैं मत समझिए कि मैं कोई बहुत ही काल्पनिक बात कर रहा हूं। अब आप उस बिंदु पर निशाना लगाते हैं, अब आप सोचिए कि अनुशासन की सीमा आपकी कहां पहुंच गई है, उसकी डेप्थ क्या हो गई है। अभ्यास करते करते आप उस बिंदु पर भी निशाना लगा लेते हैं, लेकिन आपको कमांडो बनना है, आपको सैनिक बनना है। अब आप क्या करेंगे? क्या सैनिक सामने वाले जो आपका दुश्मन होगा, जो शत्रु पक्ष का व्यक्ति होगा, वो चुपचाप खड़ा रहेगा दीवाल की तरफ और अपना सीना लेकर के कि लो भैया मेरे सीने पर तुम गोली मार दो, वो भी आपके तरफ गोली चला रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप भी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, मारना भी है बचना भी है। यानी कि सामने वाले की जो बॉडी है वो लगातार मूवमेंट में है, वह लगातार गतिशील है। अब क्या करेंगे? आपको गतिशील है और आपको निशाना इस तरीके से लगाना है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के लिए निशाना शरीर के कुछ हिस्सों में लगने से ही होगी, अदरवाइज वो जीवित रह जाएगा, घायल हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं। अब क्या किया गया? अब यह किया गया कि एक बोर्ड रखा गया और उस बोर्ड में एक निशान लगाया गया और उस बोर्ड को लगातार अब वो हिला रहे हैं और आपको नहीं पता है कि बोर्ड हिल करके किधर से हिलेगा, कितनी तेजी से हिलेगा, दाएं बाएं हिलेगा, ऊपर नीचे हिलेगा, तेजी से हिलेगा, धीरे हिलेगा, हिलेगा भी कि नहीं हिलेगा। और अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप इस पर निशाना लगाइए, उस बिंदु पर। बिंदु वही है लेकिन जो चीज है जिस पर वो बिंदु बना हुआ है वह स्थिर नहीं है, वह अस्थिर है, चलायमान है और आपको नहीं मालूम है इसकी गति क्या है, ऊपर नीचे दिशा क्या है, आपको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपको निशाना लगाना है। अब आप सोचिए कि आप अनुशासन के किस लेवल पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, यह है रियल अनुशासन, वास्तविक डिसिप्लिन यही है। जो मैंने शुरू में गति की बात कही थी, कल भी उस पर हम लोगों ने बात की थी, आज भी मैंने थोड़ी सी शुरुआत उसी से की है। अब आप गति और अनुशासन इन दोनों को जोड़ करके सोचना शुरू कीजिए और यह भी साथ ही साथ सोचने की शुरुआत कर दीजिए कि अगर कोई चीज गतिशील है तो अनुशासन कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। यानी कि अनुशासन को जो चुनौती देने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है वस्तुओं का गतिशील होना। दोस्तों, अब केवल आप इस सिद्धांत पर विचार कीजिएगा, इस सिद्धांत पर मैं आगे आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन अगर आप सब भी मुझे अपने विचारों से अवगत करा सकेंगे तो मेरे लिए वो बहुत बेहतर होगा। मैं आप लोगों के विचारों की प्रतीक्षा में रहूंगा और आप सबसे अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।